Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Krishna Krishna.
Hare Hare.
Hare Hare.
Hare Rama.
Hare Rama.
Hare Rama.
Rama
Rama.
Rama
Rama.
Hare Hare.
आइए भगवान के चरणों में जरा ध्यान करते हैं एक मिनट के लिए शांति से। हमारे पीछे दोहराइएगा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
सब बोलिए।
प्रणाम।
परम पूज्य संत तपोमूर्ति स्वामी जी महाराज बहुत आनंद जी, जिनकी अपार कृपा से संत सम्मेलन रोहतक शहर में हरि कथा हरि कीर्तन हो रहा है। स्वामी जी महाराज परम पूज्य सदेवानंद जी महाराज इस कार्य को संपन्न करने में साधु संतों के सम्मेलन का आयोजन करके आप रोहतक की धर्म प्रेमी जनता को हरि कथा और हरि कीर्तन का आनंद प्रदान करा रहे हैं, उनको कोटि प्रणाम। और महाराज जी संत साधु जो विराजमान है मंच के ऊपर उनको कोटि प्रणाम है। आप सबसे एक चर्चा बहुत सुंदर वेद भारती महाराज जी कह रहे थे, अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। माया का कोई अस्तित्व नहीं है, ज्ञान का अभाव ही माया है। इसलिए जब शिष्य प्रार्थना करता है ना तो कौन को कहता है ओम अज्ञान तिमरं दर्शय। मैं अज्ञानता के अंधेरे में संसार में पैदा हुआ। वैसे एक बात थोड़ी ध्यान से समझने की ये है कि ज्ञान आएगा कहां से। ये संसार का रूप वैसे अंधेरा है, सूर्य नहीं है तो अंधेरा है, चंद्रमा नहीं है तो अंधेरी रात है, बिजली नहीं है तो अंधेरा है। तिमर का मतलब अंधेरा। ज्ञान अंजन गुरु दिया, लेकिन ज्ञान का प्रकाश देगा कौन, अंधेरे को मिटाएगा कौन, गुरु। सूर्य नहीं है तो अंधेरा है, सूर्य नहीं है तो अंधेरा है। प्रकाश सूर्य देता है तब चमत्कार होता है। ज्ञान अंजन शलकाय, ज्ञान का अंजन गुरु जब देता है तो अंधेरा मिटता है। तो अंधेरे से निकलने का रास्ता सिर्फ ये है कि बाकी कुछ ज्यादा मेहनत नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके पास प्रकाश है उनके निकट में जाके बैठो तो सही। तो ये जो सम्मेलन है इसका उद्देश्य ये है, ज्यादा संत महात्मा क्यों सम्मेलन में मंगाते हैं, ये बड़ा आश्चर्य लगेगा, लेकिन एक बात मजेदार है, दीप होता है ना सबको तो प्रकाश करता है, लेकिन उसके नीचे थोड़ा सा अंधेरा पड़ा होता है, देखा है, देखा है कि नहीं देखा है, उसके पास एक दूसरा दीप जला दो तो दोनों के लिए अंधेरा नहीं होगा, देखना जाके। अब कभी देखा दोनों के नीचे अंधेरा फिर नहीं होगा। बड़ी अच्छी बात कह रही थी, ज्ञान आ जाता है तो ज्ञान का भी अहंकार अंधेरा पैदा कर देता है, ज्ञान का प्रकाश भी अंधेरा पैदा कर देता है नीचे, और दूसरे दिया इसलिए दिए के नीचे कभी अंधेरा होगा, इसलिए हमेशा भारत संस्कृति में संत सम्मेलन हुआ करते हैं, संतों की संगोष्ठी होती है, ताकि आपस में बैठकर परम सत्य के लिए आगे बढ़ने के लिए अग्रसर रहे। गुरु शिष्य ही शिष्य परंपरा है, शिष्य परंपरा कही जाती है, शिष्यों की परंपरा है, तो गुरु शिष्य साथ बैठते हैं, उसको कहते हैं संवाद, सम्यक रूप से भगवान को प्राप्ति करने के लिए चर्चा करते हैं, अंधकार को मिटाने के लिए चर्चा करते हैं। अंधकार है कहां? अंधकार तो है अंदर, दिखता नहीं है, क्या नहीं दिखता है, अरे घट में है सूझे नहीं लालत ऐसी जिंद, तुलसी संसार को हुआ मोतिया बिंद। आंख के ऊपर जब मोतिया आता है ना तो सामने वाली चीज नजर नहीं आती है, जो सामने चीज पड़ी होती है वो नजर नहीं आती, जिसकी आंख के ऊपर मोतिया होता है। ऐसे संसार के अंदर भगवान तो जगह जगह सब जगह विद्यमान है, कण कण में पृथ्वी के विद्यमान है भगवान, लेकिन दिखता नहीं है, सब जगह विद्यमान है लेकिन दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि संसार को मोतिया बिंद हो गया है, आंख खराब हो गई है। भगवान तो है लेकिन दिखता नहीं है, और ऑपरेशन करके जब चश्मा लगा लेते हैं तो सामने की चीज दिखती है। तो असल में गुरु का काम है मोती बिंद को हटा दे, ताकि भगवान सामने खड़ा है वो नजर आ जाए, वो मोती बिंद की ऑपरेशन करता है, उसका ये काम है आंख के अंदर जो अंधकार पैदा करने वाली बीमारी है उसको हटा देता है, और सुंदर सा ऐसा चश्मा लग जाता है आंख के ऊपर कि सामने की चीज सामने नजर आती है। तो ये विशेष प्रकाश करना जो है, ये संत महात्मा तपस्या करके भगवान को अंदर प्रकट करते हैं, हृदय में, हृदय में भगवान को प्रकट करते हैं। कह रहे थे वेद भारती जी महाराज के 24 घंटे भगवान प्रकट होने को हृदय में तैयार है, बैठा तो हृदय में है, लेकिन प्रकट तब होगा जब हम उससे प्रेम करके उसको बुलाएंगे, तभी तो प्रकट होगा। इसलिए लिखा चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करो, मार्जन कहते हैं सफाई को, पोचे लगाने को कहते हैं मार्जन करना, सफाई करना, किसकी सफाई करो, चित्त की सफाई करो। चित्त क्या है? मन का सूक्ष्म रूप चित्त है, ऐसे हमने सुना। अभी मन में सारी संकल्प विकल्प ये सब कुछ संसार है, वो मन के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन उसका जो जो चित्र है वो चित्र में रहता है। चित्र, चित्र समझते हैं फोटो को, फोटो है ना, हर चीज का फोटो चित्र में विराजमान रहता है। तो चित्र में भगवान कहते हैं सर्वस्याहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हूं, और हृदय हमारा अगर दर्पण है, आईना है, तो भगवान अंदर बैठा है तो दिखता क्यों नहीं? भगवान अंदर बैठा है हृदय में, वो तो सीना ठोक के कह रहा है कि मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, वो हर एक के हृदय में बैठा है। मानव तो मानव कीट पतंग के हृदय में बैठा है, इसलिए तो सौहृद सर्वभूतानाम है, किसी प्राणी को नहीं छोड़ा आज तक उसने अकेला, उसके संगी साथी होके साथ में बैठा हुआ है। उपदृष्टा अनुमंता भक्त भरता भोक्ता महेश्वर, तो उपदृष्ट है, ऊपर से देखता रहता है, वो तो हृदय में बैठा, दिखता क्यों नहीं? क्योंकि अपना दर्पण, अपना शीशा जो है अपना जो अंदर का मिरर है ना उसके ऊपर भाव महादावा गनी निर्वापणम, पता नहीं कितने जन्मों का मैल उस शीशे के ऊपर चढ़ा हुआ है। आपने देखा है कभी घर में एक महीना घर बंद करके चले जाओ, जो शीशा आपका लगा हुआ है उसके अंदर वापस आओगे तो मिट्टी चढ़ी हुई हो, अपना मुंह नहीं दिखेगा। क्या करते हैं आप लोग, झाड़ते हैं ना ऊपर से, तो कुछ शीशे ऐसे होते हैं जो झाड़ने से साफ हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी आप घर में रंग कराते हैं और रंग उसके ऊपर गिर जाता है तो फिर झाड़ने से नहीं उतरता है, फिर क्या करते हैं, पोंछना पड़ता है, पोंछने से उतरता। कुछ शीशे ऐसे होते हैं जिनको पोंछना पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं तो बहुत धनी लोग डिस्टेंबर कराते हैं और बिल्लू डिस्टेंबर के लाल डिस्टेंबर वो अगर गिर जाए शीशे के ऊपर तो पानी से पोंछने से नहीं उतरेगा, फिर क्या करेंगे, मिट्टी के तेल से रगड़ना पड़ेगा। और कहीं डामर गिर गया उसके ऊपर तो रगड़ते हैं तो दोनों तरफ से शीशा खुल जाता है। ऐसे भी लोग होते हैं जिनका शीशा साफ होने का बहुत बड़ा प्रयत्न करो तभी नहीं होता। तो कुछ ऐसे सज्जन होते हैं प्रेम से आते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान के लिए प्रेम पैदा होता है, छोटी सी हल्की सी मिट्टी होती है उड़ जाती है तो भगवान का अंदर में आनंद का अनुभव होता है। ये भगवान का दर्शन है कि आनंद का अनुभव हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। तो आनंद आत्मा का लक्षण है, आनंद शरीर का लक्षण नहीं है, आत्मा का लक्षण है, मन का लक्षण आनंद नहीं है। अरे शरीर से सुख का पता लगता है, पंखा चल रहा है तो ठंडा लग रहा है तो सुख मिल रहा है, लाइट चली गई तो दुख हो गया, ये शरीर का काम है। मन से शांति का अनुभव होता है, ओहो अब तो बड़ा शांत है, मेरे मन की बात हो गई, लेकिन जाते हुए जूता नहीं मिला तो मन अशांत हो जाएगा। संसार में मना बैठा था, सत्संग बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन चप्पल मेरा चला गया, क्या सत्संग था, अशांति हो जाएगी। लेकिन आनंद आत्मा का है लक्षण, सच्चिदानंद भगवान है, आत्मा उसका अंश है, इसलिए आनंद आत्मा का लक्षण है। और आनंद का आनंद शब्द है ही नहीं, आनंद का विपरीत शब्द है ही नहीं कोश में। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, आनंद तो प्रतिपद बढ़ता है, कम होता ही नहीं है। इस आनंद की खोज में थोड़ा सा अंदर जाके देखो, मन से और बुद्धि से थोड़ा ऊपर उठ के आत्मा के स्तर के ऊपर आकर देखो तो इस आनंद का अनुभव हो जाएगा। एक बार आनंद का अनुभव हो जाएगा तो संसार की किसी चीज में आपको आनंद दिखेगा ही नहीं, वो तो सूखी है, फीकी है, किसी काम की नहीं है। अगर वो आनंद एक बार नजर आ जाए तो उस आनंद को अनुभव करने के लिए ये सम्मेलन किए जाते हैं कि थोड़ा सा उस आनंद की झलक आपको दिख जाए। दिखती झलक है और एक बार दिखती है, बार बार नहीं दिखती, बार बार नहीं दिखती। ये तो बहुत बड़ा मार्जन करने में तो मेहनत करनी पड़ेगी, सफाई करनी पड़ेगी तब होगा। भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो बड़ा कभी आनंद का अनुभव होता है, क्यों, क्योंकि भगवान का नाम संसार का प्राकृत जगत का नहीं है। अरे ऐसे अगर प्राकृत जगत का नाम होता तो अजामिल नारायण तो अपने बेटे को बुला रहा था, नारायण कह दिया तो नारायण के दूत आ गए, जम के दूत, उन्हें फांसी डली हुई थी, खड़े थे सामने, अरे पापी है इसको ले जाना है। लेकिन विष्णु भगवान के दूत होके सामने खड़े हो गए, बोला क्यों ले जाते हैं इसको, छोड़ो, बोला क्यों छोड़े, बोला पापी है, बोला इसने वैकुंठपति नारायण का नाम लिया, बोला तुम झूठ बोल रहे हो, इसने अपने बेटे को बुलाया है। अरे बोला है संसार के अंदर नारायण थोड़ी होता है, नारायण किसी डिक्शनरी का नाम थोड़ी है, नारायण किसी नृप्त का नाम थोड़ी है, नारायण तो वैकुंठपति का नाम है। संसार में नारायण दास होते हैं, नारायण थोड़ी होते हैं। अरे भगवान का नाम जिस आत्मभाव से इस अजामिल ने आज लिया है, ऐसे तो वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण के मन से भी इतने श्रद्धा से और इतने आतुरभाव से नहीं निकलता है, इसको आपको ले जाने नहीं देंगे। एक अभास कहते हैं इसको, नाम का अभास था, लेकिन उस नाम के अभास से भगवान के दूत आके सामने खड़े हो गए, उन दूतों का दर्शन हुआ, दूतों की वार्तालाप हुई विष्णु दूतों की और यम दूतों की। सिर्फ उस विष्णु भक्तों का संग करने से, देखने से अजामल को मौत जैसे भय से मुक्ति मिल गई, मौत से बच गया और एक जीवन का चांस मिला, एक और चांस मिला। एक बार ही थोड़ा सा भक्तों का संग हो जाने से मृत्यु जैसे भय से विष्णु दूतों ने आकर यम दूतों जैसे भय से उसको यम का फांस गले में पड़ा हुआ था छुड़ा दिया। तब उसने एकदम सावधान होकर सोचा कि एक बार चांस मिला है, अब ये मौका नहीं गंवाना है, छोड़ के पाप अपराध सब चला गया, हरिद्वार में बैठ के भगवान का भजन किया। चांस तो मिलता है सबको, लेकिन उसको कौन अवेल करता है, उसका कौन लाभ ले,
मुसलमान है, पाप किए तो कोई बात नहीं, लेकिन आज जब मौका मिला है कि सब पाप की पोटली को यहां छोड़ो आगे बढ़ो, तो इस मौके का फायदा कौन लेता है? वो बुद्धिमान अजामिल जितना पापी के ऊपर से यमराज परेशान था कि सारे इसके किताब लिख लिख के थक गए, इतने इसने पाप किए हैं, लेकिन एक बार भगवान का नाम लेने से उसका मृत्यु का संकट मिट गया। तो भगवान का नाम संसार का नहीं है, आम शब्द आप बोलते हो इसमें इतनी ताकत होती है। अरे किसी को प्रेम से दो मीठे शब्द बोल दो, सारी जिंदगी आपकी सेवा में लगा देता है, अपना जिंदगी कुर्बान कर देता है आपके ऊपर, प्रेम के दो शब्दों के ऊपर ही तो होता है। किसी को दो बुरे शब्द कह दो तो झगड़े हो जाते हैं, देशों के बीच में बड़ी बड़े दुश्मनी हो जाती है, एक दूसरे की मारा मारी हो जाती है, दो शब्द ही तो होते हैं ना। अभी एक शब्द जलेबी कह दे तो सबको गोल गोल जलेबी, मीठी मीठी जलेबी दिखाई देगी, शक्ल भी जो जलेबी जो शब्द ही तो है ना, लेकिन दिखती है कि नहीं दिखती। तो संसार के हर शब्द में जब ताकत है और उसका रूप है जो आदमी के अंदर परिवर्तन ला सकता है, क्रोध का शब्द कहने से आदमी लड़ने को तैयार होता है, जो शब्द ही तो है और है क्या, जब इतना परिवर्तन संसार के शब्दों में हो सकता है, अरे भगवान के नाम के ब्रह्म शब्द का उच्चारण करने से अलौकिक आनंद ना हो तो कोई बात नहीं बनती है। संसार का शब्द इतना शक्तिशाली हो सकता है तो भगवान के शब्द में कितनी शक्ति हो सकती है, उसका अनुभव तब होता। बहुत सुंदर इसके बाद लिखा है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावागनी निर्वापणम, अनाधिकार से जमे हुए हृदय के मैल को साफ करना है, हृदय के दर्पण को धोना है। बोला कैसे? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान श्री कृष्ण नाम के संकीर्तन की जय हो। अनाधिकार से हृदय के ऊपर जमे हुए मैल को धो देता है। विद्या वधु जीवनम, अरे जो असली विद्या है जिसके द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता है, जो निम्रता प्रदान करती है, उस विद्या वधु, वधु कहते हैं जिसका पति जिंदा होता है उसको वधु कहते हैं, नहीं तो विधवा कहते हैं। तेरी विद्या जो है वो वधु हो जाती है जब भगवान के इस परम कीर्तन में आनंद लेते हैं। तो भगवान से वधु का मतलब बहुत बड़ी आनंद में रहती है, अपने पति के बगल में जब रहती है तो बड़ी आनंद में रहती है। विद्या वधु जीवनम, कैसे ये भगवान का नाम लें, अंधकार से मुक्त हो कैसे लें, ये तीन बातें समझ लें तो जीवन सफल हो जाए। लेकिन बहुत आसान दिखती हैं, करने में थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुन अमानीन मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। हरि का कीर्तन सदा करो। कब? जब पहले तृणादपि सुनिचेन, अपने आप को गली में गिरे हुए घास के तिनके से भी ज्यादा निम्र बना लो। ये रास्ता निम्रता का रास्ता है। निम्रता का मतलब है हाथ जोड़ देना। एक ये हाथ जोड़ते हैं ना किसी के सामने तो ये 10 नाली बंदूक है, सामने वाले का क्रोध शांत हो जाता है केवल ऐसे हाथ जोड़ने से। आपने देखा है संसार में हम सब बैठे हैं, एक दिन जन्म लिया है हमने, बच्चे का जन्म होता है ना, तो जब बच्चे का माँ के गर्भ में बच्चा होता है ना, ये उसकी खाई जो छोड़ी होती है ना ऐसी छाती से ऐसे लगी होती है और हाथ ऐसे होते हैं और उल्टा लटका हुआ होता है, पूरा प्रणाम किया होता है। और जो बच्चे का ऐसे रूप होता है ना, वो इस संसार के अंदर किसी वैद्य की किसी डॉक्टर की किसी ऑपरेशन के बगैर इस दुनिया के अंदर अपने आप आ जाता है, उसको कोई कष्ट नहीं होता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी है, अपने आप प्रसव हो गया। लेकिन जो बच्चा गर्भ के अंदर जिसका गर्दन ऐसे हो जाता है ना, ये जगह यहाँ से ऐसे निम्रता से होके ऐसे हो गई ना, वो इस संसार में आ नहीं सकता, उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। तो अहंकार जो गला है, गला ऐसे गर्दन जब हो जाता है ना, तब संसार सागर से पार होना बहुत मुश्किल हो जाता है। निम्रता जब होती है, ऐसे निम्र हुआ जब ऐसे शरीर होता है संसार में, तो भव सागर पार करना बहुत आसान है, कोई कठिनाई उसमें नहीं होती है। फिर तो संसार को पार करना है तो पहले चाहिए निम्रता। बोला तृण से ज्यादा निम्रता। बोला तृण से ज्यादा क्यों? बोला कभी हवा तेज लगती है, घास उड़ के आंख में आए तो परेशान कर देता है, उससे ज्यादा भी निम्र होना चाहिए। तो निम्रता बहुत बड़ा गुण है। निम्रता के गुण से भगवान की प्राप्ति बहुत सरल है। एक निम्रता, और दूसरा क्या हो? तृणादपि सहिष्णुन तरोरपि सहिष्णुन। तरो कहते हैं वृक्ष को। वृक्ष से ज्यादा अपने में सहनशीलता अगर हो, गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो आंधी हो, हर चीज को सहन करता है खड़ा हुआ वृक्ष। फल देता है, छाया देता है, पत्ते देता है, कोई काटता है उसको लकड़ी देता है, ऐसे जिसमें सहनशीलता आ जाए संसार के अंदर, वो भगवान का नाम लेगा तो भगवान उसके हृदय में हर समय अपने आप प्रकट हो जाएंगे, कोई उसमें रुकावट नहीं है। तो एक तो निम्रता चाहिए और दूसरी सहनशीलता चाहिए और तीसरी अमानिता, मान की अभिलाषा न हो संसार में कि मेरे को लोग मान दे, मेरी पूजा हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, ये अमानी नहीं जब तक नहीं बनेगा। ज्ञान का पहला लक्षण गीता कहती है अमानी तुम अदम्भी तुम, अमानी तुम, मान की अभिलाषा मत करो संसार में सबको, लेकिन सबको मान जरूर दो, अमानी न मान देना, सबको मान दो, सबको प्रणाम करो, सबको सबको बहुत बड़ा आदर दो हरे को, लेकिन अपने आप को दुनिया में अमानी बना, अमानी न, अमानी न, मान की अभिलाषा नहीं हो। मान की अभिलाषा का मतलब लोग मुझे कहे मैं बड़ा अच्छा हूं, मेरा बुद्धिमान हूं, बड़ा कर नहीं, जरूरत नहीं है। अरे भगवान सबको देख रहा है, निम्र आदमी, छोटा जो आदमी दुनिया में बनता है ना, कभी आपने देखा है? हम थोड़े दिन पहले एक देश से दूसरे देश जा रहे थे, वो प्रसाद किसी ने दिया, प्रसाद हमारे साथ बैग में था, प्रसाद के अंदर दो तीन छोटी चिमटियां थी, कोई टिकट नहीं लिया, कोई वीजा नहीं है, एक देश से दूसरे देश मुफ्त में पहुंच गए। छोटी सी चुंटी जो थी ना, तो छोटी जो चुंटी थी उसको एक दूसरे में दूसरे देश जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, पासपोर्ट वीजा कुछ नहीं पड़ा, वो हमारे प्रसाद के साथ चली गई। तो ऐसे दुनिया में अगर छोटे बन जाओगे ना, तो कोई संत महात्मा के संग में प्रसाद के रूप में भगवान के दरवाजे पहुंच जाओगे बगैर किसी तकलीफ के। छोटा संसार में बनना पड़ेगा, छोटा बनने में बड़ा बड़ा सुख है, छोटे को बहुत बड़ा सुख है। तो भगवान का नाम जब लेना है तो अपने में निम्रता पैदा करनी पड़ेगी, सहनशीलता पैदा करनी पड़ेगी, अमानिता पैदा करनी पड़ेगी, लेकिन सबको मान देना पड़ेगा, सबके लिए मान। अब जब उस ऐसी स्थिति जब हो जाएगी, तब जब भगवान का नाम लेंगे, नयनम गद श्रुधार या वदनम गद गद रुद्ध या गिरा पुलकय निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। भगवान तेरा नाम लूं, आंखों से अश्रु धाराएं बहे, गला रुंध जाए, शरीर में रोमांच हो जाए, आनंद में मगन हो जाऊं, वो दिन कब आएगा जब ऐसा हृदय हो जाता है पवित्र, अंदर प्रकाश हो के, भगवान जब अंदर में प्रकाशमान हो जाते, भगवान की पधराई जब अंदर हो जाती है, तो ऐसा रोमांच होके आनंद में भगवान का नाम लेके ऐसा आदमी मदन होके संसार के अंदर मगन घूमता है कि संसार के दुख उसको दिखते ही नहीं है। जैसे हवाई जहाज में चढ़े हुए, हवाई जहाज के ऊपर बैठे हुए चढ़े हुए लोग को संसार की बड़ी बिल्डिंगें कुछ दिखाई नहीं देती, इतनी छोटी माकोड़े जितनी लगती है, संसार के दुख तो इतने छोटे लगते हैं। प्रहलाद कहते हैं, तुम कहते हो ये पहाड़ की चोटी है, मुझको तो लगती है मुझसे छोटी, कहां से मैं गिरूंगा, मैं कुछ हो जाएगा, नीचे है ना मेरा बाबा, मुझे गोद में पकड़ लेगा। तो बड़ी छोटी तुमको दिखती है, लेकिन मेरे को इतनी, मेरे से भी लगती है छोटी, तो संसार का दुख कुछ नहीं दिखता है। जब भगवान तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाता है, उस भगवान को प्रकट करने का सरल तरीका है कि उस आनंद के अनुभव करने का सरल तरीका है कि भगवान का, जब इतने सब संगी साथी बैठे हैं, संत साधु बैठे हैं, तो सब मिलकर जब कीर्तन करते हैं, तो ये तो ज्वाइंट अपील है भगवान को, सब मिलके ज्वाइंट अपील है भगवान को। तो जब साथ मिलके कीर्तन करते हैं तो भगवान की प्रसन्नता है, ये भगवान का वचन है, यत्र गायन्ति मद भक्त तस्त कृष्णामि नारद। अरे मैं कहाँ रहते हो भगवान, जावि जा रहे हैं आप, नारद जी पूछ रहे हैं, पर ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, ऐसे नहीं है कि तुम मर के वैकुंठ में आओगे तब मुझसे मुलाकात होगी। बोलो फिर, योगी नाम हृदयेषु, ऐसे भी नहीं है कि तुम घर छोड़ के, बाहर छोड़ के, मकान दुकान छोड़ के हिमालय में आके योगी बनोगे तब मैं तुम्हारे को मिलूंगा, उधर बैठा हूं दिल में, ऐसे भी नहीं है, न मरने के बाद मिलूंगा, न कहीं घर छोड़ने के बाद मिलूंगा, फिर कहां मिलेंगे? यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहां मैं उपस्थित होता हूं। आइए भगवान को, आइए भगवान का कीर्तन करें, और भगवान के इस कीर्तन में
एक कीर्तन अब होगा, कीर्तन से पहले मैं सुनना चाहूंगा एक टाइम टेबल जो प्रातः काल के लिए है, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हवन होगा, जो भी माताएं बहने भाई हवन में अपना योगदान सामग्री